तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक को। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैषेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। देखिए, एक अर्थ तो उसका हम प्राय समझते ही हैं, जो अर्थ ये है कि व्यक्ति की इंद्रियां उन वस्तुओं की तरफ भागती हैं जहां उसको पूर्व संस्कारों के कारण अच्छा लगता है, और उन वस्तुओं से दूर भागती हैं जहां पे पूर्व संस्कारों की वजह से बुरा लगता है। ये तो सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया इसमें लगी पड़ी है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। लेकिन यहां पे एक शब्द है विधेय आत्मा। जो व्यक्ति, एक अर्थ है, दूसरा अर्थ भी हम लेंगे जो बड़ा चतुर, बहुत अद्भुत चमत्कृत करने वाला अर्थ है, कि जो व्यक्ति विधि का पालन करता है, जैसा शास्त्र में अनुमोदित है वैसा करता है, तो वह भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। सिंपल अर्थ, सीधा अर्थ ये है कि जो व्यक्ति विधि का पालन कर रहा है, भले ही उसके मन और इंद्रियां वैसा नहीं चाहते, तो वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। सीधी बात, साधना भक्ति करेगा तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और अगर अपने मन के अनुसार काम करेगा तो वर्तते काम कारता, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये सीधा अर्थ है। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में गीता भूषण के अर्थ को लेंगे, जिसमें और जो और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि मन अगर भगवान को अर्पित हो गया तो इंद्रियां कदाचित निषिद्ध इंद्रिय विषयों की तरफ भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मन पवित्र हो चुका है। मन से भोग इच्छा निवृत्त हो चुकी है, इसलिए अगर आंख कुछ वस्तु देख भी रही है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी स्थिति नहीं है, ये समझ लेना चाहिए कि हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन जो स्थितप्र के व्यक्ति है, उसका उसके सामने इंद्रिय के विषय आ भी जाएं तो उससे वो प्रभावित नहीं, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है, भगवत प्रेम से पूरित है। जैसे जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसके सामने भगवत विषयक वस्तु आए भी तो भी उसका मन भोगों में लगा रहता है। ऑल्दो ये नहीं कह सकते उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको लाभ होता है, लेकिन वह अनुभव नहीं होता जैसे जिसका जो भगवत प्रेमी का होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, व्यतिरेक में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यह अर्थ हम भी समझने का प्रयास करेंगे। अब यह क्यों बोल रहे हैं भी ध्यान रखिए, क्योंकि इससे पहले भगवान ने कहा था कि इंद्रियों को सीमित किया है, लेकिन ध्यायतो विषयान पुंसः, इंद्रियों को सीमित किया हुआ है कर्मेंद्रियों को, लेकिन अगर मन में बार बार ध्यान कर रहा है विषयों का तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा और व्यक्ति गिर जाएगा। लेकिन इसके विपरीत बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि यदि मन भगवान में लगा है और इंद्रियां अगर बाह्य रूप से कार्य कर रही हैं, तब भी व्यक्ति का पतन नहीं होता, उसे भगवान की कृपा प्राप्त है। अभी उसके एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे भी, और एग्जाम्पल हैं भी शास्त्र में ऐसे, ठीक है। पहले हम टीका पढ़ लेते हैं, शायद एकदम नया कंसेप्ट है इसलिए हजम नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, और अभी आपको मैं उदाहरण दूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि इंद्रियां संयमित ना भी हो तो भी यदि मन पर विजय प्राप्त की जा चुकी है तो कोई दोष नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यानी कि मन तो उसने पहले ही भगवान को अर्पित किया हुआ था, अब बाह्य रूप से आपको लग रहा है, देखने में बाहर वालों को लग रहा है कि उसकी इंद्रियां तो विषयों की तरफ गोचर हैं, विषयान इंद्रियां चरण उधर जा रही हैं, लेकिन उससे कोई उसे वो प्रभावित नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? मैं उदाहरण दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दुर्वासा मुनि को गोपियों ने खूब खीर पकौड़ा खिलाया, और फिर बोले कि यमुना से वापस कैसे लौटेंगे, यमुना की स्थिर आ गई, तो कहते हैं दुर्वासा, बोल देना यमुना जी को कि दुर्वासा दुर्वहारी, दुर्वासा केवल घास खाते हैं। घास खाते हैं? अभी तो आपने खीर पकौड़ा खूब खाया और आप कहते हो केवल घास खाते हैं। ये गोपाल तापनी उपनिषद की स्टोरी है। और जब उन्हें क्रॉस करना था तो कृष्ण से बोले कि क्रॉस कैसे करें, अरे यमुना जी को पार करें, तो कहना कृष्ण बोले कह देना कि यमुना कृष्ण ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी, अरे इतना तो रासला चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि खैर ये तो कृष्ण दुर्वासा की बात है, कृष्ण के हृदय में कोई भोग इच्छा नहीं, और ऐसे ही दुर्वासा मुनि के भी हृदय में कोई भोग इच्छा नहीं है। अच्छा और एग्जाम्पल दे लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल स्थितप्रज्ञ लोग हैं, भगवान तो खैर स्थितप्रज्ञ से कहीं ऊपर है, वो तो कोई मतलब ही नहीं उसका। लेकिन और एग्जाम्पल लीजिए शिव जी का, शिव जी पार्वती जी को अपने जंघा पे बिठा करके वैराग्य का प्रवचन दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? आप जानते हो स्थितप्रज्ञों में धीर पुरुषों में शिव जी श्रेष्ठ है कि नहीं? और एग्जाम्पल सोच लीजिए, पुंडरीक विद्या, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पुंडरीक विद्या ने दी, उनका भगवतपुर में पूरी तरह से आसक्त मतलब कह सकते हैं स्थित हैं, और बाह्य रूप से लग रहा है कि भोगों में लगे हुए हैं, पान चबा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन महान भक्त हैं, कोई फर्क प्रभावित नहीं होते। और सोच लीजिए युधिष्ठिर महाराज, रामानंद राय का एग्जाम्पल तो है लेकिन मैं वो देना नहीं चाह रहा था तो टू मच हो जाएगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज 18 दिन के बाद पूरे राज्य के पूरे विश्व के राजा बन गए, लेकिन कोई प्रभावित नहीं हुआ। और एग्जाम्पल ले लीजिए सुदामा, सुदामा को भगवान ने एक ही दिन में या जितना समय लगा हो लौटने में इतना सारा ऑपुलेंस दे दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी मति भगवान से नहीं गई। और एग्जाम्पल लीजिए कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि ऐसा लग रहा था कि पत्नी के संग हैं, इतना भोग भोग रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा अलुप्त महिमा, उनकी महिमा अलुप्त नहीं हुई, उनका चित्त भगवान से हटा नहीं। और लीजिए और कोई बताइए, माइक पे बताइए। हाँ शील प्रभुपाद जी, शील प्रभुपाद जी से बोला कि आप क्या स्पेशल है आपके अंदर, अन्य योगियों से क्या स्पेशल है? तो कहते हैं रूम में निर्वस्त्र स्त्रियां भी हों 20, लेकिन मेरा मन प्रभावित नहीं होगा, उसका दिमाग खराब हो गया। अगर ये कैसा, ये कैसा उत्तर है यार, इतनी बड़ी बात? तब देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बाह्य रूप से उसके लग रहा है कि इंद्रियां विश्व में लगी हैं, लेकिन उसका नहीं विश्व में लगी, उसका मन भगवान में अर्पित हो चुका है। तो ये बात क्या बोली जा रही है, भगवान ने क्या सिखाया? मत परहा जब तक नहीं होता, अपने मन को मुझ में अर्पित नहीं करता, तब तक विषयों में माया के द्वारा गिरने का संभावना बनी रहती है, यह सीखा था। दूसरा, अगर उसका मन संयमित है, मन भगवान में लगने लग गया, तो इंद्रियां बाहर रूप से अगर ऐसा लग रहा है कि विषयों में लगी हुई हैं, वो नहीं लगी। अच्छा दूसरा हमारे लेवल पे देख लीजिए, जैसे हम लोग गाड़ियों में घूमते हैं और प्रचार करने जाते हैं, तो अब कोई बाहरी व्यक्ति सोचेगा कि अरे ये गाड़ी में घूमने के लिए साधु बना, हाँ बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से एक प्रचारक को कौन सी गाड़ी में जा रहे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसका मन में यही रहता है कि वह अब भगवान के बारे में क्या बोलेगा, क्या बातें करेगा। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, टवेरा में जाओ कि मारुति में जाओ उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मन भगवान में अर्पित है, जितनी मात्रा में अर्पित है, तो इंद्रियां भी बाहर से अगर लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि भोग में लिप्त है, वह व्यक्ति लिप्त नहीं है, प्रभावित नहीं होता। बड़ा रहस्यमय है, प्रभुपाद जी भी इस अपने तात्पर्य में इस बात को बताएंगे। इन 8 श्लोकों में भगवान अर्जुन के आखिरी प्रश्न कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार इंद्रियों के कार्य में प्रवृत्त होता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। पिछले श्लोकों में कहा गया कि यदि व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो संयमित करता है, परंतु मन को मुझ में या मुझको अर्पित नहीं करता, तो उसके आध्यात्मिक प्रयास विफल हो जाएंगे। ये तो याद ही है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, और वापस भौतिकता में गिर जाएगा। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को मुझे अर्पित करता है, तो निषिद्ध इंद्रिय विषयों का अनुभव करते हुए भी वह राग आदि मनोमल को त्याग देता है। राग मतलब विषयों का बार आसक्ति, प्रगाढ़ आसक्ति को राग कहा जाता है, क्योंकि वस्तुतः राग कहां पे है? मन में है, और मन हो चुका है भगवान में। इसीलिए जैसे मान लीजिए महाराज जी बार बार बोलते भी हैं कि अगर आप भागवत में मन लगाते हैं, आपका मन भगवान की संबंधित श्लोकों में विचार करने में, चिंतन करने में लगा हुआ है, तो लिटरली इसे कहा जाएगा सामान्य भाषा में खोए रहेंगे आप। समझते हैं इसका अर्थ, खोए रहे? तो लोग खोए रहते हैं, खोएने का अर्थ क्या है? आपका चिंतन उसमें चलता रहे। हमने कल भी चर्चा किया था कि भगवान के भक्त क्योंकि भगवान के रूप गुण इत्यादि में अपने चिंतन को लगाए रखते हैं, इसलिए जगत के मान अपमान सुख दुख की परवाह वह नहीं करते। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ऐसी मेरी मति आपके पास चरणों में लगे, यही बात। एक और उदाहरण मन में आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु तो खैर भगवान है लेकिन वो खाते पीते भी थे ऐसे जस्ट व्यवहार के लिए, उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज भी खाते सोना सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा था, उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कब खाया कब सोए, ऐसे करके जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लिया हो ऐसा। तो बड़ी अच्छी स्थिति है, हम लोग इस पे नहीं है। लेकिन एक और एग्जांपल है, जैसे कि नारद मुनि वो स्वयं ब्रह्मचारी हैं लेकिन कयाद्रु को अपने आश्रम में कई समय तक रखे, प्रहलाद महाराज की माता जी को। नॉट टू बी इमिटेटेड एट होम, समझते इसका घर में अनुकरण ना करें, हमारा योग्यता नहीं है लेकिन ये सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति की योग्यता है। प्रसादम अर्थात शुद्धता या कृपा, भगवान की कृपा को प्राप्त हो गया ऐसा व्यक्ति, उसका मन शुद्ध हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों के प्रति राग या द्वेष से रहित हो चुकी हैं, क्योंकि वे मन के वश में होती हैं जो भगवान को अर्पित होता है। तो मन भगवान में लगा है, भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, तो इंद्रियां बाह्य रूप से लगी हैं तो उससे कोई उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इंद्रियों के बाह्य रूप से लगे होते हुए भी वह प्रगति करता चला जाएगा, मन शुद्ध होता चला जाएगा। चलिए रामानंद राय की बात आ ही गई है तो हम बोल भी देते हैं। रामानंद राय जी बारे में आप जानते ही हैं, उनके पास किसको भेजा गया था, प्रद्युम्न मिश्र को बोला भेजा गया था कृष्ण कथा सुनने के लिए। और जो पहले दिन गए तो उनने कहा कि कहाँ है, तो उन्हें कहा कि वो देवदासियों को नृत्य करना और ड्रामा करना सिखा रहे हैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो उस प्रकार से उनको बहुत अंतरंग व्यवहार करना पड़ता था उन देवदासियों के प्रति। तो यह देख करके सुन करके प्रद्युम्न मिश्र की कुछ अश्रद्धा हो गई कि ये क्या हो गया, ऐसे व्यक्ति के पास क्यों भेजा महाप्रभु ने, महाप्रभु ने स्वयं क्यों भेजा। और फिर महाप्रभु उनको समझाते हैं कि उनका जो मन है वो पत्थर की तरह है, उनके मन में कोई विकार काम विकार नहीं आता है। तो महान भक्त बाहर से रूप से ऐसा लग रहा है कि इंद्रियां के विषय में उनकी इंद्रियां गोचर हो रही हैं जा रही हैं, लेकिन उनका मन भगवान से कभी नहीं हटता, ये बात होती है। अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है उन लोगों के हृदय में। तात्पर्य पढ़िए, क्या नाम है आपका, दशरथी प्रभु पढ़िए।
यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में असक्त नहीं होता।
क्या आप समझाने की जरूरत है, समझ में आ गया, रूपा जी स्पष्ट बता रहे हैं ना कि वो इसीलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न हो जाए। महान विज्ञ व्यक्ति भी वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को नहीं समझ सकता, बहुत बहुत आपको सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए।
उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं, अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है।
जैसे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लीजिए कि प्रायः जितने सन्यासी होते हैं वो धन से दूर भागते हैं, मैनेजमेंट से भी दूर भागते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को क्या मैनेजमेंट नहीं करना पड़ा, क्या धन से डील नहीं करना पड़ा। तो यहां तक कि प्रभुपाद जी खुद उदाहरण देते हैं कि मेरे यहाँ अमेरिका में जो शिष्य हैं वहां पे लड़के लड़की आपस में बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, तो मैं सन्यासी होकर के भी इनकी शादी कराया और इसके कारण से मेरी निंदा भी की जा रही है, लेकिन उच्चतर गोल पे कुल नहीं देख रहे हैं कि इसके बिना यहाँ प्रचार करना संभव नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो बाह्य रूप से लगेगा अरे सन्यासी होकर के क्या कर रहे हैं आप, शादी वादी क्यों करा रहे हैं, खुद और यज्ञ कौन करेगा, प्रभुपाद खुद यज्ञ कराए है ना, पंडित जी तो मिलेंगे नहीं वहां पे, कोई खुद यज्ञ कराए। तो क्यों, क्योंकि उनका गोल उच्चतर है, कृष्ण की प्रचार पूरे विश्व में हो और एक गृहस्थ के रूप में रह करके वे प्रचार कर सकते, तो इसलिए बाह्य रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते भक्त को देखकर, ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली। मान लो आप किसी भक्त को प्रसाद खाते हुए देख रहे हैं, महाप्रसाद, अब वो किस भावना में खा रहा है, स्पेशली वो उच्चतर भक्त, हम नहीं कह सकते, बहुत डेंजरस। यस,
कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानता अवांछित कार्य भी कर सकता है।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया सन्यासी को शादी में क्या मतलब है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वो करते हैं।
कल ही बताया था भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सुधीर ठाकुर वो
एकदम मतलब समझ रहे ना, अचिंत है किस प्रकार से वो बीड़ी रोल करके दे रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते है कि नहीं। हाँ मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ना, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, तो समझ लेना चाहिए जो हमारे लिए नो नो है वो उन पे अप्लाई नहीं करता। यस,
किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं करेगा जिसे वह समान रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान के अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है।
ये लाइन समझ में पूरा समझना चाहिए। इंद्रियों में आसक्त मतलब उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषय में कार्य कर रही हैं, लेकिन उसका मन भगवान में आसक्त है। जैसे आप यहां देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, अर्जुन युद्ध क्यों कर रहा था, क्या कारण है? अर्जुन भगवद गीता के बाद सुनने के बाद युद्ध क्यों किए? भगवान ने बोला, भगवान से प्रेम है, भगवान को सुख देने के लिए, खत्म है कि नहीं? तो भगवान से सुख देने के लिए अब उसकी इंद्रियां पूरी तरह प्रवृत्त है, घोर कर्म में प्रवृत्त है, अपने गुरुओं से युद्ध कर रहा है, कर रहे हैं, लेकिन कोई कर्म कोई दिक्कत नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो माम अनुस्मर युद्ध चा, और माम अनुस्मर युद्ध चा तभी होगा जब भगवान से प्रीति होगी। तो कृष्ण प्रीति अर्थ है भक्त कोई भी कार्य कर सकते, फिर भी हमारे लेवल पे हमें गुरु कृष्ण वैष्णव सबके ही मतलब क्या कहते हैं उसको, अनुमोदन ले लेना चाहिए कि ये भी हमारा स्तर नहीं है, और हमें तो अभी पीछे वाले स्तर पे ही हम हैं कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखना चाहिए ताकि हमारा मन दूषित नहीं हो। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं श्लोक के ऊपर आप लोग? माइक बोलिए।
सूरज वो सब कार्य कर सकता है क्योंकि उसकी शक्ति, जैसे कि जो मल पड़ा होता है उसको सुखा देता है।
हाँ, मल को सुखा देता है सूर्य, लेकिन वह प्रभावित नहीं होता। यस, ये भी उदाहरण है। जैसे एक और एग्जांपल मन में आ रहा है, कितना प्रासंगिक है पता नहीं, लेकिन शिला गौर के तो किशोरदास बाबा जी महाराज को लोग बहुत परेशान करते थे, तो लैट्रिन के पास जाके जब करते थे ताकि वहां लोग ना आए, ऐसे कर। अभी तो एक मैंने किसी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी संत का सुना कि उन्होंने जानबूझ करके किसी वैश्या को अपने घर में बुलाया, संग वंग कुछ नहीं किया कि तुम मेरे घर पे रोज आओ। क्यों आए भाई? ताकि मेरे को जो प्रसिद्धि मिल रही है वो दूर हो जाए, लोग मुझे मेरी भर्सना करने लग जाएं कि मैं खराब व्यक्ति हूं, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, मैं भगवान का भजन करूं। कौन है मुझे मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सुना था, पढ़ा भी था शायद, कोई थे भक्त थे, मतलब इस प्रकार से मतलब उनको। यह हम जैसे एक और देख सकते हैं, हरिदास ठाकुर जी भी वे माया को देखे, उस लखा हीरा वैश्य को देखे, लेकिन उनका मन कभी प्रभावित नहीं हुआ। तो ये बड़ा मतलब अद्भुत स्थिति है। यह रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सबसे अच्छे एग्जांपल, रघुनाथ दास गोस्वामी जब गृहस्थ आश्रम में थे उनका चित्त भगवान की तरफ ही भाग रहा था, लेकिन बाह्य रूप से बड़े अच्छे मैनेजर की तरह कार्य कर रहे थे, विषयी व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे थे। ऋषभदेव तो भगवान ही हो गए यहां, तो मतलब स्थिति प्र के व्यक्ति मतलब साधक या जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसी स्थिति हो सकती है भक्तों की, ये बात कहा जा रहा है, ये बात बोलना समझना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 65। एक और एग्जांपल मन में आ रहा है, धनुर्धर जो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन आप सब जानते हैं अगर उनके बारे में सुनना होगा तो किस प्रकार से वे पूरी तरह से विरक्त थे, बाह्य रूप से वो गृहस्थाश्रम में थे। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर जज के रूप में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान में परम प्रेम है, परम प्रीति है, परम निष्ठा। शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी कार में चल रहे हैं, कोट पैंट पहन के आ रहे हैं और सन्यासी भी हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इंद्रिय विषयों का ऐसा लग रहा है आपको कि वो भोग में लगी हुई है, लेकिन उनका मन जो है भगवान में लगा हुआ, ये समझ लेना चाहिए। ऐसी स्थिति होती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, ये समझना चाहिए। एक श्लोक और देखते हैं, टेक्स्ट 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। टेक्स्ट इस प्रकार, कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसी अवस्था में उसे गर्मी नहीं लगेगी, क्या उसे मच्छर नहीं काटेंगे? क्या लोग उसको ही भर्सना नहीं करेंगे, क्या मान अपमान नहीं प्राप्त होगा, तो तीन ताप कैसे नष्ट हो गए बताइए। लेट्स सी, ये टफ प्रश्न है। गर्मी होगी, बरसात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कैसे नहीं होता, आप कैसे कह सकते हो कि ताप नष्ट नहीं होंगे?
महाराज बता रहे थे कि उसको हरा नहीं सकते ये सब चीजें,
अभिभूत नहीं कर सकते, ठीक है,
अभिभूत है।
और सम रहेगा एक उत्तर है, और
जितना भी हम देहात में बुद्धि के स्तर पे रहते हैं उतना ही हमें ये ताप जो है वो परेशान करते हैं।
पहला पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट ये है कि देहात में बुद्धि पे ये चीजें हमें अधिक प्रभावित करती हैं। यस, और
जैसे देहात में बुद्धि से ऊपर चला जाता है तो ये चीजें उसको परेशान ही नहीं करती,
परेशान नहीं करती, और उसका मन जो है भगवान के आनंद में निमग्न रहता है।
जो कल आपने बताया,
हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि भगवत प्रेम के समय कितना आनंद मिलता होगा। तो मन जब उस आनंद में सराबोर है तो फिर यहाँ की वस्तुओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये भी देख लेना चाहिए कि ताप दे कौन रहा है, कौन दे रहा है? माया देवी दे रही है। तो जो क्यों दे रही है? क्योंकि भगवान से विमुख हो, तो जब भगवान से विमुखता समाप्त हो गई तो माया देवी ताप देंगी भी क्यों? हम लोग एक्चुअली कल्पना नहीं कर सकते इस बात को, लेकिन मैंने देखा है, एक भक्त के संग उनके पास गया था, एकदम हीट हो रहा था रूम, लेकिन अपना आराम से हरे कृष्ण अपना जप कर रहे हैं, वो जप में पूरी तरह एब्जॉर्ब है। और एक और आप देख लीजिए, कसके भूख लगी हो तो फर्क पड़ता है कितनी गर्मी लग रही, खुद ही देख लीजिए। अभी कल ही की बात है, फास्टिंग थी, 2 बजे था, बलराम हॉल में खूब कसके गर्मी थी, कूलर नहीं चल रहा था। एक वक्त बोला कूलर नहीं चल रहा, हमने कहा खाने के बाद बोलता हूं मैं पहले भूख लगी खा लेने दो, उसके बाद सोचेंगे कूलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि उसमें इतना सुख मिल रहा है कि व्यक्ति को याद नहीं। और एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कुछ लड़के होते हैं जो वीडियो गेम खेलते खेलते खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, मर जाते हैं, मर भी जाते हैं, उतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें। जिस प्रकार से एक भगवत व्यतिरेक में समझ लेना चाहिए, इस तरह से जब भौतिकता में लोग इतने एब्जॉर्ब हो सकते हैं तो आध्यात्मिकता में भी उससे कई गुना अधिक एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ताप इत्यादि इसको नष्ट प्रभावित नहीं करते। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर जाती है। पवित्र मन प्राप्त होने पर क्या होता है? इसका उत्तर ये श्लोक है, जब योगी का मन पवित्र हो जाता है तो प्रकृति के संसर्ग से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। उसी को प्रभुपाद जी ने सीधे अपने अनुवाद में रख दिया। बहुत बार प्रभुपाद जी जो आचार्यों की टीका है उसको अपने अनुवाद में रख दिया करते हैं। जिस व्यक्ति का मन, देखिए आप देखेंगे श्लोक में तीर्ताप नहीं आया कहीं, तो प्रभुपाद जी ने उसको टीका से उठा करके अपने अनुवाद में रख दिया। प्रभुपाद जी ने कोई टीका नहीं किया उसके ऊपर। जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया है और आत्मा में स्थित हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म है। देखिए बुद्धि हमेशा प्लानिंग करती रहती है, ये करना है, वो करना है, मन में कुछ भोग के संस्कार होते हैं तो फिर उसकी प्लानिंग करती रहती है कैसे प्राप्त होगा। तो अब वह बुद्धि प्लानिंग सारी छोड़ चुकी है, उसका मन भगवान में स्थित है, बुद्धि की एकमात्र है सेवा कैसे करनी कृष्ण, बस और कोई प्लानिंग नहीं, ठीक है। कोई प्रश्न?
मन शांत का मतलब तो यही होगा ना, भगवान
में, बस भगवान में लगे।
शांत का मतलब ऐसे कोई रुक, तो मन रुक नहीं
भाई
सकता
है। स्पष्ट है सिद्धि क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण की इच्छा को संतुष्ट करने में लगा है उसका मन शांत है।
शांत का ऐसा मतलब तो नहीं साइलेंट एकदम,
शांत का मतलब कभी भी नहीं होता है कि इसमें कोई इच्छा नहीं होती, केवल कृष्ण की संतुष्ट करने की इच्छा वाला मन ही शांत होता है। तो वहीं लग गया तो बुद्धि भी उसके पीछे लग गई, ये प्लान बनाओ, वो प्लान बनाओ, कृष्ण की सेवा करो।
पर आत्मा में स्थित होने का जो मैं यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग है कि
सिंपल अपने स्वरूप में स्थित होना, मैं भगवान का दास
स्वरूप की मतलब ये पहचान में रहना कि आई एम सोल, बस यही,
आई एम सोल एंड दैट इज नॉट द स्वरूप ऑफ सोल। आई एम सोल इज नॉट द फुल स्वरूप ऑफ सोल। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अगर मैं आत्मा हूं ना, हाँ वही नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोला मैं ब्रह्म हूं तो ये मायावादी बात, मायावादी नहीं ब्रह्मवादी तक बात रहती, मैं ब्रह्म हूं बस, लेकिन मैं परब्रह्म ब्रह्म का भगवान का अंश हूं, उनका सेवक हूं, यह सही अंडरस्टैंडिंग। तो आत्मा में स्थित होने का प्रभुपाद ने खूब अच्छे से बताया है, भगवान के सेवक के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करना, उसके अनुसार कार्य करना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, ठीक है। चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।